अनोखी है, अनमोल है, सपनों में ले जाएंगी ढेर सारी कहानियाँ। अब नानी हमें सुनाएंगी
क्योंकि
ये है नानी की कहानियाँ, क्योंकि ये है नानी की कहानियाँ।
नानी कहानी सुनाओ ना प्लीज।
अच्छा तो सुनो, मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ एक राजकुमारी की कहानी जो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके पापा के गुजर जाने के बाद अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती थी। बताओ जरा क्या नाम है उसका?
सिंड्रेला, है ना नानी?
शाबाश मेरे बच्चों। सिंड्रेला के परिवार के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, तो अब आगे की कहानी सुनाती। बहुत समय पहले एक देश में एक सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला की एक सौतेली माँ यानी स्टेप मदर थी और दो सौतेली स्टेप सिस्टर्स। तीनों बेचारी सिंड्रेला से सारे घर का काम करवाती थी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई और न जाने क्या क्या।
और क्या क्या काम कराती थी नानी?
अरे कितनी बार तो उसकी सौतेली बहनें उसे तंग करने के लिए उसे छोटे मोटे काम करवाती थी, जैसे कि कोई चीजें गिराकर सिंड्रेला को उठाने को कहती थी, घर गंदा करके उसे साफ करने को कहती थी। छोटी से छोटी चीजें जो वो खुद कर सकती थी सिंड्रेला से करवाती थी।
पर ये तो गलत है ना नानी, आपने तो कहा था कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए।
बिल्कुल ठीक मेरे बच्चों। बेचारी सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों की सेवा करती रहती। और फिर एक दिन महाराज ने महल से एक निमंत्रण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहर की हर लड़की, बूढ़ी जवान, अमीर गरीब, सबको उन्होंने अपने महल में एक दावत पे निमंत्रित किया, क्योंकि अब युवराज को इन परिवारों में से किसी एक प्रिंसेस को चुनकर उससे शादी जो करनी थी।
अच्छा, वाव, फिर क्या हुआ नानी?
बस फिर क्या था, सिंड्रेला की सौतेली बहनें जोरों शोरों से अपने पहनावे पर ध्यान देने लगी। वो दावत में क्या कपड़े पहनेंगी, आए दिन बस उसी के बारे में बातचीत होने लगी। सौतेली माँ के सामने रोज उनका रोना धोना शुरू हो गया कि उनके पास कपड़े पुराने हैं, नए कपड़े चाहिए। सौतेली माँ ने तय किया कि उनके लिए बाहर से महंगे कपड़े, जूते, मेकअप, सारा सामान सब लाया जाएगा। तब सिंड्रेला ने अपने कपड़ों की भी बात की, कहा कि उसे भी तो नए कपड़े चाहिए होंगे। ये सुनकर सौतेली माँ और बेटियां जोर जोर से हंसने लगी और सिंड्रेला पर झाड़ू फेंकते हुए कहा कि वो घर के काम के लिए ही ठीक है, ये दावत उसके लिए नहीं। सिंड्रेला ने थोड़ी और हिम्मत करके उन्हें मनाने की कोशिश की। ये कहा कि महाराज ने शहर की हर लड़की को दावत पे बुलाया है, ये दावत उसका भी हक है। बस फिर क्या था, सौतेली माँ को गुस्सा आया और उसने सिंड्रेला को अपने कमरे में बंद कर दिया, उसे खाना नहीं दिया और कहा कि जब तक उसके सर से ये दावत का भूत नहीं उतर जाता तब तक वो अंदर ही बंद रहेगी। सिंड्रेला दुखी थी पर उसने अपने आंसू पोंछे और कहा कि अब वो दावत पर जाने की जिद नहीं करेगी, अब से सिर्फ घर का ही काम करेगी। समय के साथ निमंत्रण का दिन भी आ गया और माँ बेटियां अपने नए कपड़े पहनने में व्यस्त हो गई। सिंड्रेला उन्हें दूर से देख रही थी, सोच रही थी कि काश वो भी दावत पे जा पाती। तभी सौतेली माँ ने उसे एक और काम दे दिया, कहा कि कमरे की हालत बहुत खराब है और वो खूब अच्छी तरह झाड़ू लगाए और दरवाजा भी अच्छी तरह से बंद करने को कहा, क्योंकि पता नहीं अब वो दावत से किस वक्त लौटे। और माँ बेटियां महाराज के महल की तरफ निकल पड़ी। बेचारी सिंड्रेला कमरे में झाड़ू लगा रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। इतने में एक सुंदर फेरी गॉड मदर उसके सामने आ खड़ी हुई। सिंड्रेला उसे देखकर भयभीत हो गई, लेकिन उस फेरी गॉड मदर ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसकी दोस्त है और वहाँ उसकी मदद के लिए आई है। सिंड्रेला के कुछ और सवाल पूछने पर फेरी गॉडमदर ने उसे बताया कि वो अक्सर दुखी लोगों की मदद करने आ जाती है। उसका मकसद है हर जगह बस खुशियाँ बांटना। सिंड्रेला ने अपने आंसू पोंछे और वो हंसने लगी। तब फेरी गॉडमदर ने उसे कहा कि वो सिंड्रेला को महाराज के महल में पहुंचा देगी। पर सिंड्रेला ने कहा कि उसके पास ना ही नए कपड़े हैं और जूते भी नहीं हैं और ना ही महल तक जाने का वाहन। बस फेरी गॉडमदर ने उसे हंसते हुए कहा कि इन सब की वो चिंता ना करे और बगीचे में जाकर बस वो एक बड़ा सा कद्दू ले आए और नन्हे से चूहे ढूंढकर उन्हें भी ले आए।
और फिर क्या हुआ उसके बाद?
सिंड्रेला की समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। अब फेरी गॉडमदर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और देखते ही देखते पीले रंग का कद्दू एक सुंदर रथ में बदल गया और चूहे घोड़े और सारथी में बदल गए। सिंड्रेला अचंभित हो गई। अब फेरी गॉडमदर ने जादू की छड़ी दोबारा घुमाई और पलक झपकते ही सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े बिल्कुल शानदार कपड़ों में बदल गए और उसके प्यारे छोटे छोटे नाजुक से पैरों पर शीशे के सुंदर जूते सज गए। अब तो सिंड्रेला बहुत ही सुंदर लगने लगी। वो इतनी खुश हो गई कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तभी फेरी गॉडमदर ने उसे एक शर्त बताई। उसने कहा कि ये सारी चीजें जादू की है और रात के ठीक 12 बजे ये सब गायब हो जाएंगे, इसलिए वो रात 12 बजने से पहले अपने घर पहुंच जाए। सिंड्रेला ने उसे बहुत धन्यवाद दिए और कहा कि वो जरूर 12 बजे से पहले घर पहुंच जाएगी। अभी सिंड्रेला बात ही कर रही थी कि फेरी गॉडमदर गायब हो गई।
फिर क्या हुआ?
फिर सिंड्रेला अपने रथ में बैठकर महाराज के महल पहुंच गई। महल में जब लोगों ने सिंड्रेला को देखा तो वो अचंभित रह गए, सबसे ज्यादा युवराज। सिंड्रेला अपने नए जोड़े में इतनी प्यारी लग रही थी कि युवराज तुरंत उसकी ओर आ गए और उससे पूछा कि वो कौन से शहर से आई है। सिंड्रेला ने शर्माते हुए कहा कि वो उन्हीं के शहर की निवासी है। युवराज को सिंड्रेला इतनी प्यारी लग रही थी कि वो पूरी शाम उसके साथ बातों में लगा रहा। बाकी के मेहमान भी सिंड्रेला को देखकर बहुत आनंदित थे। और हंसने वाली बात तो ये है कि सिंड्रेला की माँ और उसकी बहनों ने उसे पहचाना तक नहीं। वो तो समझ रहे थे कि सिंड्रेला तो घर में बैठी होगी। युवराज के साथ बातें करते करते सिंड्रेला को समय कब खत्म हो गया अनुमान ही नहीं रहा कि इतने में 12 बजने ही वाले थे। सिंड्रेला की नजर झट से घड़ी पे पड़ी और उसे फेरी गॉडमदर की बातें याद आने लगी। उसने युवराज से माफी मांगी और वहां से भागने लगी। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि सिंड्रेला ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, उसका नाम भी कई बार पूछा। वो सिंड्रेला के पीछे भी भागे, पर तब तक सिंड्रेला जा चुकी थी। बहुत तेजी से रथ को दौड़ाकर निकल पड़ी और जैसे ही वो घर पहुंची 12 बज गए और सिंड्रेला के सुंदर कपड़े, उसका वाहन, उसके सेवक आदि एक पल में गायब हो गए और वो बेचारी पहले जैसी थी वैसे ही घर में झाड़ू देने लगी।
So sad. फिर क्या हुआ नानी?
बेचारा युवराज हताश होकर महल की सीढ़ियां चढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर एक सुंदर शीशे की जूती पर पड़ी जो सिंड्रेला के पैरों से उस समय उतर गई थी जिस समय वो सीढ़ियों से भागकर जा रही थी। युवराज ने लपक कर सिंड्रेला की जूती उठाई और सोचने लगे कि अब उसे सिंड्रेला अवश्य मिल जाएगी। उसने अपने सारे सैनिकों को सारे घरों में जूती के साथ भेजा ताकि सिंड्रेला का पता चले। अब सारे शहर में हाहाकार मच गया। हर लड़की यही चाहत करने लगी कि जूती उसके पांव में सही आ जाए, पर वो जूती किसी के भी पैर में नहीं बैठ रही थी। और समय के साथ युवराज के सैनिक सिंड्रेला के घर पहुंच ही गए। सबसे पहले बड़ी बहन ने जूती पहनकर नाटक किया कि वो जूती बिल्कुल उसके नाप की है, तो सिपाहियों ने उसे चलकर दिखाने को कहा और जैसे ही वो चलने लगी तो झट से गिर गई और वो जूती उसके पैरों से निकल गई। फिर दूसरी बहन ने जूती को पहना, लेकिन उसे भी वो जूती काटने लगी। सिंड्रेला बेचारी उस समय घर में झाड़ू दे रही थी। सैनिकों ने उसे देखा और उसे भी जूती पहनकर दिखाने को कहा, लेकिन सौतेली माँ और बेटियां हंसने लगी और उन्होंने कहा कि वो घर की नौकरानी है और दावत की रात वो घर पे काम कर रही थी। पर सिपाही अड़े रहे। उन्होंने कहा कि युवराज का आदेश है कि शहर की हर लड़की ये जूती पहनकर दिखाएगी। उनकी भारी आवाज सुनकर सौतेली माँ और बेटियां डर गई और सिंड्रेला को जूती पहनकर दिखाने को कहा। अब सिंड्रेला ने जूती पहनी तो वो उसे बिल्कुल सही आ गई। सब लोग अचंभित रह गए। युवराज को जब पता चला तो वो तत्काल सिंड्रेला के घर पहुंचा और उसे अपने महल ले आया और फिर उनकी धूमधाम से शादी हो गई। सिंड्रेला की माँ और बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिंड्रेला से माफी मांगी। सिंड्रेला जो मन की बहुत अच्छी थी, उसने सब को क्षमा कर दिया और अपने युवराज के साथ खुशी से महल में रहने लगी। कभी कभी जब उसे अपनी फेरी गॉडमदर का विचार आता तो वो आहिस्ता से कहती, प्यारी फेरी गॉडमदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत सुखी हूँ और आकाश में तारे यूं मुस्कुराते जैसे सब फेरी गॉडमदर सिंड्रेला को देखकर आनंदित हो रही हो। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी कहानी?
अच्छी।
तो अब मैं तुमको अगली बार एक और कहानी सुनाऊंगी।
ओके नानी।